ओम शांति। सभी फिर से प्यार से कहेंगे ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी का मेरे तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस ज्ञान सरोवर परिसर में आकर आप इसकी भव्यता को देखकर अवश्य ये सोचते होंगे कि ये संस्था क्या है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, अब तक कहाँ तक पहुंची है, कौन इसके स्थापक हैं, कैसे ये स्थापना हुई, वो आज कुछ संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि ये स्थान कोई साधारण सत्संग का स्थान नहीं है। अनेक सत्संगों में जाते हैं, कोई साधु संत महात्मा गुरु सत्संग कराते हैं, वहाँ पूजा पाठ आदि सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ उस रूप से सत्संग नहीं चलता, न कोई उस रूप से पूजा पाठ होता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो जैसे कोई विद्यालय होता है या विश्वविद्यालय भी होता है, तो उसमें कोई लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई से जो हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे उससे क्या पद पाएंगे। कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं, और यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग व्यवसाय अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी एक विश्वविद्यालय है। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, अर्थात स्वयं परमात्मा ने यह विद्यालय आरंभ किया है। तो हम यही कहेंगे कि वो जो विद्यालय होते हैं उनमें डॉक्टर इंजीनियर वकील आदि बनते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय में हम मानव से देव बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। अगर यूं कहें कि मानव महामानव बन जाता है, मनुष्य तो हम सब हैं, लेकिन महामानव जो मानवों से भी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ देव है, आत्मा है, तो नर नारायण कैसे बनता है, नारी श्री लक्ष्मी कैसे बनती है, वो इस विद्यालय में सिखाया जाता है। हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं, जैसे विद्यालयों में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारे भी यहाँ चार सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान। वैसे तो ज्ञान तो अथाह होता है, अनेक पुस्तकें हैं, सब ज्ञान की पुस्तकें भी है, अनेक पुस्तकालयों में ये ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हम इसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने यह ज्ञान हमें दिया है। हम लोग ये कहते भी हैं असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय, कि हे प्रभु हमें वो ज्ञान दो जिससे हम असत्य की से निकल सत्य में आए, सत्य को पहचाने। तो सत्य क्या है, किसको कहेंगे सत्य, वो यहाँ सिखाया जाता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान का अंधकार आज सारे संसार में फैल चुका है, तो परमात्मा वो ज्ञान देकर के हमें वो प्रकाश देते हैं, जिस प्रकाश के द्वारा एक प्रकाशमय दुनिया बन जाती है, जिसको हम सतयुग कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मृत्यु मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। अर्थात ये मनुष्य भूल चुका है कि मैं कौन हूं, और यही समझते हैं कि हमने एक दिन जन्म लिया है और एक दिन मर जाएंगे। लेकिन हम वो विनाशी हस्ती नहीं है जो एक दिन जन्म लेती है और एक दिन मर जाती है, लेकिन मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो अमृतत्व का ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, जो कभी जलती नहीं, मरती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, जिसका न जन्म है न मृत्यु है। तो उस आत्मा का ज्ञान, खुद को पहचानना, जो आज आपको सुबह सत्र में बताया गया होगा। फिर दूसरा ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान में गिना जाता है वो है परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर कौन है, हम कौन है। सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन तक कैसे पहुंचते हैं, वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं और उनसे क्या प्राप्ति होती है, जिसको ही हम कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। तो खुद की पहचान, परमात्मा की पहचान, और फिर कर्मों की पहचान। आज मनुष्य ये भूल चुका है कि उनको कौन से कर्म करने चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इन सब का ज्ञान होना ये वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान है। और फिर समय का ज्ञान, अभी कौन सा समय चल रहा है। वैसे तो कहेंगे कलयुग चल रहा है, पर कई समय से कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। परंतु जब समय का ज्ञान हमें मिल जाता है तो हम अनुभव करते हैं कि अभी कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन कलयुग का बाकी थोड़ा समय बचा है, बच्चा नहीं है। अब कलयुग के अंत का समय है, जबकि घोर कलयुग आ चुका है तो ये कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। और इस घोर कलयुग के अंदर हम मानव खुद से भी दूर हो गए हैं, ईश्वर से भी दूर हो गए हैं, अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य से भी दूर हो गए हैं, जो आज हम संसार में देख रहे हैं। इसीलिए समय का ज्ञान, तो खुद को पहचानेंगे तो परमात्मा के नजदीक अवश्य आएंगे, क्योंकि सेल्फ को रियलाइज करने से गॉड को भी रियलाइज कर सकेंगे। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है, जिनका शिक्षक स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ने ही अपनी पहचान देकर अपने साथ योग लगाने की विधि भी बताई है, जो भगवान कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही आकर के देता हूँ। तो वो कैसे परमात्मा ने अपनी पहचान दी है, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। कई जब ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं तो कई पूछते हैं, आप क्या इनको गुरु मानते हो या इनको आप भगवान मानते हो। हम कहते हैं ना इनको हम गुरु मानते हैं ना ये हमारे कोई भगवान है। भगवान तो एक ही है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सदा शिव कल्याणकारी है, जिसको सभी धर्म पिताओं ने भी याद किया। तो परमात्मा अपनी पहचान खुद देकर अपने साथ योग लगाने की शिक्षा देते हैं। तो ये हमारा दूसरा विषय है, सहज ज्ञान के साथ दूसरा विषय है सहज राजयोग, जो इस विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। जिसको गीता में हम सुनते हैं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। और राजयोग की क्या परिभाषा दी, हे अर्जुन तू मुझे याद कर, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो इस राजयोग के द्वारा हम परमात्मा से संबंध जोड़कर अपने पापों को नाश करते हैं, शुद्ध बनते हैं, पावन बनते हैं। वही परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि यही शुद्धिकरण का भी मार्ग है। और इसी शुद्धिकरण के मार्ग से हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। अपने आप को पहचाना, ईश्वर को पहचाना, तो जीवन में इतने मूल्य आ जाते हैं, जिन मूल्यों के लिए हम कहते हैं कि मानव का जन्म इतना मूल्यवान है, हीरे तुल्य जन्म है इंसान का। लेकिन आज इंसान क्योंकि खुद को भूला, ईश्वर को भूला, तो अपना ये मानव जीवन इतना हीरे तुल्य है वो भी भूल गया। तो उस हीरे तुल्य जीवन को हमने कौड़ी तुल्य बना दिया है, क्योंकि खुद को भूल गए, ईश्वर को भूल गए, और जीवन के मूल्यों को भी भूल गए। क्योंकि जीवन में अगर मूल्य नहीं है तो समझो जीवन का भी मूल्य नहीं है। जीवन का मूल्य ही तब है जब जीवन में मूल्य है। इसलिए यहाँ पर वो मूल्यों का ज्ञान सिखाया जाता है, जिसको हम तीसरा विषय कहते हैं, दिव्य गुणों की धारणा। जीवन में वो दिव्य गुण आए। हम ये तो कहते, अभी भी आपने कंपैशन की बात की, कितने गुणों की आपने बात की, लेकिन प्रश्न उठता है वो गुण धारण करने वाला कौन। शरीर तो नहीं धारण करेगा, वो तो आत्मा ही धारण करती है। तो वो गुण कैसे आएंगे, जब हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, जीवन को के मूल्यों को पहचानेंगे। ये आत्मा ही धारण करती है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, इन सब मूल्यों का आधार है, जिसको हम इननेट वैल्यूज कहते हैं, कोर वैल्यूज कहते हैं। जीवन के जो अमूल्य गुण हैं, जो हमारे मौलिक गुण हैं, उन गुणों को पहचानना, ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट है। इसीलिए आपको कई वैल्यूज पर कुछ स्पष्टीकरण दिया गया। हम ये तो समझते कि ये मूल्य होने चाहिए, लेकिन आएंगे कैसे, और कौन धारण कर रहा है। ये शरीर तो नहीं धारण करना है, करता है, शरीर तो हड्डी मांस का पिंजरा है, वो तो पंच तत्वों की चीज है, पंच तत्वों से आई है, पंच तत्वों में मिल जानी है। लेकिन जो अमृतत्व स्थिति है, आत्मा की अमृतत्वता, वो मुझे अनुभव करनी है, तभी तो मैं मूल्यों को धारण कर सकूंगी। इसलिए जीवन के लिए हम यही कहते हैं, हम आए हैं हाथ खाली, आए हैं हाथ खाली जाना है। लेकिन आध्यात्मिकता हमें कहती है कि हाथ खाली आए हैं हाथ खाली जाना नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, बच्चे के लिए ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया है। तो भाग्य कौन लेकर आया, वो पिंड में, हाँ, वो बच्चा समझो माँ के गर्भ में पैदा हुआ, तो भाग्य कौन लेकर आया, भाग्य वो आत्मा लेकर के आई पूर्व जन्म से। और जब मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं, हाथ खाली गया नहीं, वो क्या लेकर गया, अपना कर्म लेकर गया। तो वो कर्म कौन लेकर जाता है, शरीर तो नहीं लेके जाएगा, वो तो हाथ खाली आया हाथ खाली जाएगा, लेकिन कर्म कौन लेकर गया, आत्मा लेकर गई। और आत्मा जब कर्म लेकर जाती है, वो ही भाग्य बन करके फिर अगले जन्म में आता है। तो वो कर्म और भाग्य का आधार ही हमारे मूल्य है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। अगर वो मूल्य धारण करके श्रेष्ठ कर्म करती है तो अपना मित्र बन जाती है, और अगर अपने कर्मों से भ्रष्ट हो जाती है तो अपना ही शत्रु बन जाती है। और मित्र बनी तो सुख देगी अपने आप को, शत्रु बनी तो दुख देगी, क्योंकि यही चक्र है संसार का, जिसको हम कहते हैं जन्म मरण का चक्र। और जन्म मरण के साथ कितने चक्र आ जाते हैं, कर्म फल का चक्र, पाप पुण्य का चक्र, सुख दुख का चक्र, इन सब चक्रों में कौन आता है, आत्मा आती है। इसलिए आत्मा के लिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा ये शब्द यूज करते हैं। तो मैं वो आत्मा हूं जो मैं अपने अनादि काल में अति मूल्यवान थी, अति गुणवान थी, पर वो गुण आएंगे कैसे, जब हम अपने आप को वो आत्मा रूप में देखेंगे। पर आज हम अपने आप को केवल देह रूप में देख रहे हैं, तो देह अभिमान के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए हैं और हमारे मूल्य नष्ट हो गए हैं। तो इसीलिए कैसे ये जीवन में दिव्य गुण आए वो यहाँ सिखाया जाता है। और ये जो जीवन में हम दिव्य गुण धारण करते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, इसके आधार से हम अपने जीवन में जो पाया वो दूसरों को देते हैं, इसको हम कहते हैं ईश्वरीय सेवा। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, ये सब सेवाएं हैं। हमारे सोशल वर्कर्स बहुत सेवाएं करते हैं इस प्रकार से, लेकिन सबसे ऊंचा दान माना जाता है महादान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, ज्ञान का दान, ये महादान है, क्योंकि उससे चरित्र बनता है। और जब चरित्र हमारा श्रेष्ठ बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है और प्रकृति भी हमें सुख देने लगती है। ये पांच तत्व आज दुख क्यों दे रहे हैं, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान आदि आदि जो भी प्रकृति के प्रकोप हम आज महसूस कर रहे हैं, चलो कितना भी कहो ग्लोबल वार्मिंग है या जो कुछ भी क्लाइमेट चेंज है, ये सब क्यों हो रहा है, तो हम कहते हैं इसका मूल कारण ही है मन का प्रदूषण। मन का प्रदूषण से सब प्रदूषण आ गया। अब इस मन का परिवर्तन करके खुद में भी और दूसरों में भी इस ज्ञान के आधार से, तो इस विश्वविद्यालय का यही विषय, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के मुताबिक हम अपने जीवन में लक्षण धारण करते हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो इसके फाउंडर हैं, वो कौन थे, तो वास्तव में वो एक बहुत बड़े जौहरी थे, हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे, बिजनेसमैन थे। और ये बिजनेस तो कोई छोटी मोटी बिजनेस नहीं होती है, और भी कई प्रकार की बिजनेस होती है, लेकिन ज्वेलर और वो भी हीरे जवाहरातों के जेवर बनाना, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। और उसकी वो बिजनेस थी, और उनके जो ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, वो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, अंग्रेज थे जो उनसे जेवर खरीदते थे। लेकिन कैसे बाबा को अचानक एक दिन वैराग आ गया, क्यों वैराग आ गया, उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया, ये 1936 की बात है। विष्णु चतुर्भुज उनके सामने उपस्थित हो गए और उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। वैसे बाबा विष्णु के ही भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे, तो जितने ही बड़े भक्त थे, धनवान तो थे ही, तो धनवान भी थे, भक्त भी बहुत बड़े थे, कोई मंदिर उन्होंने दर्शन नहीं किए हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमरनाथ की यात्रा भी की थी तो भक्ति भी उनकी अथाह थी, पर साथ साथ एक खोज भी थी सत्य को जानने की। दानी भी बहुत थे, जो उनके द्वार पर जाता था कभी हाथ खाली नहीं आता था, तो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, लेकिन सत्य की खोज थी और सत्य को जानने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले, अनेक गुरु किए, लेकिन उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला और इससे भी उनको वैराग आ गया। लेकिन सबसे बड़ा वैराग्य तब आया जब उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया और विष्णु ने उनको ये वरदान दिया कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। उससे तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, इनका दास हूं, विष्णु की भक्ति करते थे, मैं इनका दास हूं, सेवक हूं, मैं इन जैसा कैसे हूं। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि आप उसके लिए कुछ और एकांत वास कीजिए, तो आपको भगवान का आदेश मिलेगा कि आप उनके जैसे कैसे हो या कैसे बन सकते हो। अब उसके लिए बाबा एकांत वास करने लिए बनारस चले गए, हैदराबाद सिद्ध में रहते थे और उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, ये अखंड भारत था, भारत पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था और सिंध हैदराबाद में रहते थे। तो बाबा वहां से बनारस चले गए, बनारस में अपने मित्र की कोठी में रहकर रोज संध्या काल में उनके जो आंगन था, बगीचा था, उसमें विष्णु का ध्यान करते थे और ध्यान में बैठे बैठे अचानक बाबा को एक और साक्षात्कार हुआ। इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश बाबा ने देखा, तीन प्रकार से विनाश होता हुआ देखा, एक अणु युद्ध के द्वारा, दूसरा ग्रह युद्ध के द्वारा और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश देखा। अणु युद्ध के द्वारा बाबा ने देखा कैसे एटम बॉम्ब हवाई जहाज से गिरा और जहां गिरा वहां आग ही आग लग गई, जबकि 1936 में एटम बॉम्ब का कोई इस प्रकार से ज्ञान नहीं था। लेकिन उन बाबा ने वो साक्षात्कार में देखा। फिर ग्रह युद्ध देखा, खून की नदियां बहती हुई, चारों ओर लाशें ही लाशें, और फिर प्राकृतिक आपदाएं देखी और देखते देखते बाबा ने देखा सब कुछ नष्ट हो गया, सारा संसार नष्ट हो गया। तो जब ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को लगा ये मैंने क्या देखा, हे भगवान अगर ये दुनिया ऐसे ही खत्म होने वाली है तो फिर ये बनाई क्यों। फिर और प्रश्न उठा, बनाई क्यों। फिर प्रश्न उठा तो भगवान मुझे क्या करना है, क्योंकि ये आदेश मिला था कि तू मेरे जैसे हो, तो मेरे जैसे हो तो मुझे आप मेरा कुछ कर्तव्य आपको करना होगा, तो क्या करना है मुझे वो भी तो मालूम पड़े। और फिर कुछ समय के बाद बाबा को एक सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, सत्युगी दुनिया जिसमें बाबा ने देखा बहुत सुंदर सोने के महल, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए महल, और उसमें लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर विराजमान, और इतनी सुंदर दुनिया जो बाबा ने कभी पहले ऐसा देखा नहीं था दृश्य। और फिर उसी समय उनको एक आकाशवाणी हुई, लखीराज बाबू के नाम से बाबा प्रसिद्ध थे, तो लखीराज उठो उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सत्युगी दुनिया आनी है और ये दुनिया आपको बनानी है, ये भगवान ने काम दिया उनको। अब ऐसी सत्युगी दुनिया तुम्हें बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा भगवान, ये भी तो बताएं। लेकिन फिर कौन करेगा, समझ में नहीं आया उनको कैसे करूंगा। लेकिन उसके बाद बाबा बनारस से कलकत्ता गए और अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया, क्योंकि वो हीरे बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, इतना वैराग आ गया। तो ये आज से 88 वर्ष पहले की बात है और उस समय बाबा की आयु 60 वर्ष की लगभग हो गई थी। तो 1936 में उनको इस प्रकार से वैराग आया और अपनी बिजनेस वाइंड अप की और बाबा वापस हैदराबाद सिंध चले गए, लेकिन बिल्कुल दुनिया से जैसे दूर, बिल्कुल सिंपल बन गए और जो विष्णु का ध्यान करते थे उसी में मग्न हो गए। लेकिन एक दिन अचानक उनको ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने महसूस किया कि वो ज्योति उनके समीप आई और वो ज्योति उनमें समा गई। ये उन्होंने अनुभव किया और उसके बाद तो चमत्कार होने लगे, क्योंकि जब वो ज्योति प्रवेश हुई तो उनके मुख से परमात्मा ने अपनी पहचान दी कि मैं निज आनंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। ये उनके मुख से शिव परमात्मा ने अपनी पहचान दी, परंतु वो तो ध्यान में थे और जब ध्यान से नीचे उतरे तो तब पूछा गया कि आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि उनके चारों ओर लाइट ही लाइट, ललाट इतना चमक रहा था, आंखें चमक रही थी, चेहरा चमक रहा था। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने एक टूक कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, वो मुझ में प्रवेश हो गए और अब वो मुझसे कुछ महान कार्य कराएगी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और फिर चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? हाँ, बाबा खड़े होते थे और जो भी बाबा को देखता था, बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। लोगों को घर बैठे भी श्री कृष्ण के साक्षात्कार होने लगे और श्री कृष्ण उनको कहता था कि मैं तुमसे तब मिलूंगा जब आप इनके पास जाएंगे, और इनको ढूंढ ढूंढ करके पहुंच जाते थे। और जैसे बाबा के सामने पहुंचते थे वो ध्यान में चले जाते थे, श्री कृष्ण का वो साक्षात्कार करने लग पड़ते थे। बस इस प्रकार ये साक्षात्कारों की धूम शुरू हो गई हैदराबाद सिंध में। और फिर धीरे धीरे अनेक परिवार जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और फिर बाबा हैदराबाद से कराची चले गए और कई समर्पित हो गए। तो करीब 350 भाई बहने समर्पित हो गए बाबा के पास और एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ हुआ कराची में। और 14 साल तक उन्होंने तपस्या की कराची में। परमात्मा ने उनको यह आदेश दिया कि अब अपने जीवन को योगी बनाना है, पवित्र बनाना है। तो तपस्या की वहां 14 साल कराची में। और इसी बीच बहुत कुछ हुआ, 1937 से लेकर 1950 तक। ये 14 साल दुनिया का नक्शा बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39 to 45, और वो वॉर तब समाप्त हुआ जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब्स गिराए। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारे में कितनी रक्त ब्लडशेड हुआ, इतनी एकदम गृह युद्ध का रूप हो गया और बहुत ही ब्लडशेड हुआ, लाशें पड़ गई रास्तों पर, इतना कैसे गृह युद्ध हुआ। तो अणु युद्ध भी हुआ, पार्शियल कहेंगे, और उसमें पूरा कम्युनिज्म आ गया, रशिया के साथ मिलकर के कैसे वो USSR, मतलब जो भी हुआ उस समय दुनिया की हालतें जो बिगड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लाखों लोग मारे गए। तो बाबा से पूछते थे, बाबा यही विनाश है? तो बाबा कहते थे कि ये विनाश नहीं तो ट्रेलर है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, लाखों लोग मारे गए, ये तो ट्रेलर है। और वो बॉम्ब जो गिराया था वो तो बेबी बॉम्ब था, 10 मेगाटॉन बॉम्ब केवल, और अभी तो कितने पावरफुल बॉम्ब्स बन गए हैं। तो और उस समय जो गृह युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय भी इतना दुख फैल गया। जो बाबा से पूछते थे कि बाबा यही क्या विनाश है, तो बाबा कहते थे ये भी ट्रेलर है। गृह युद्ध भी मानो ट्रेलर था, अणु युद्ध भी ट्रेलर था। और उस समय बहुत सारी आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी भी आया, भूकंप आया, क्वेटा में इतना बड़ा भूकंप आया, पूरा शहर का शहर, बलूचिस्तान में क्वेटा शहर, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, सब दब कर मर गए, इतने हजारों लाखों लोग जो होंगे। मानो प्राकृतिक आपदाएं भी आई, परंतु ये संस्था तो पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान हो गया वो सिंध, तो बहुत आतंक फैल गया वहां पर, तो वो तो बहुत डिटेल है। लेकिन इस संस्था का बाल बाका भी नहीं हुआ, 350 भाई बहने, तपस्वी बहने वहां तपस्या की। उनसे पूछते थे आप कौन से धर्म के हो, अगर हिंदू हो तो चले जाओ भारत, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो सिर कटवाओ, नो फोर्थ ऑप्शन, कि या तो हिंदुस्तान चले जाओ, या तो मुसलमान बन जाओ, या तो सिर कटवाओ। लेकिन इस संस्था को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तपस्या करती थी, पूछने आते थे आप कौन से धर्म के हो, तो बहने बाल खुला रख के तपस्या कर रही तपस्विनी बहने, वो कहती थी मानवता हमारा धर्म है, मानव का कल्याण करना हमारा धर्म है, ये धर्म है। तो उनको उनके नजदीक भी नहीं जाते थे। परंतु जब 1950 हुआ, भारत गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक हो गया और दोनों सेपरेटेड कंट्रीज हो गए, तब शिव परमात्मा का आदेश आया कि अब भारत में जाओ और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये उस समय शिव परमात्मा ने कहा था, भारत विश्व गुरु बनेगा, सारे विश्व को शांति की राह दिखाएगा और भारत में आएंगे लोग, आएंगे भारत सब बड़ा तीर्थ स्थान बन जाएगा, बहुत कुछ बाबा ने उस समय कहा। और भारत में कहाँ जाओ वो भी कहा कि पहाड़ पर जाओ, क्योंकि कराची में थे वो तो सागर के किनारे पर है, तो पहाड़ पर जाओ। तो ये जो माउंट आबू पहाड़ है ये कराची से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर है ये, और इसी कराची से यहाँ बाय शिप आए, सरकार ने उनको पूरा शिप दिया, जहाज, क्योंकि इतने सारे भाई बहने थे और सब कुछ लेकर के आए, क्योंकि उस समय जो भी हिंदू सिख आए, दौड़ के आए, कुछ भी लेके नहीं आ सके, हाथ खाली नंगे पैर, कुछ भी नहीं, अपनी प्रॉपर्टी तो क्या, हाँ एक पाई भी नहीं ला सके, ऐसे भागे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इस संस्था को कहा गया आप सब भले ला ले जा सकते हैं, तो एक सुई भी नहीं छोड़ी हम यहाँ तक बोलते हैं, और हम भारत में या माउंट आबू में आए, तो शिप में आए, ओखा बंदरगाह सौराष्ट्र में है, वहां से बाई ट्रेन यहाँ आए। तो ये माउंट आबू जो स्थान है ये राजाओं महाराजाओं का समर कैपिटल था, यहाँ बहुत बहुत राजाओं के महल देखेंगे, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस, भरतपुर पैलेस, ये सब यहाँ महल है। तो गर्मी के दिनों में राजा लोग यहाँ आते थे और यहाँ का वो समर कैपिटल था, तो इन महलों में रहते थे। लेकिन जब गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया भारत, तो उसके बाद इन्होंने सब होटल बना दिए हैं। तो माउंट आबू में जो उद्योग कहो या जो भी बिजनेस कहो, वो होटल बिजनेस है या स्कूल्स है या हॉस्टल्स है, बस यही है माउंट आबू, और पर्यटन स्थल है। लेकिन बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। तो ये माउंट आबू में आना हुआ और पांडव भवन, जो उस समय पोकरान हाउस कहलाता था, पोकरान के ठाकुर थे, उनका वो पूरा स्थान है, वो हम लोगों ने लिया। उसके पहले भरतपुर राजा का महल किराए पर लिया, फिर कोटा हाउस, कोटा और ढोलपुर ये राजस्थान के वो महाराजा वहां पर रहते थे, वो किराए पर लिया, फिर आखिर पोखरान हाउस लिया जहां सबसे पहला एटम बम का वो एक्सपेरिमेंट किया गया था पोखरान। तो उसका ठाकुर राजा जैसा ही था, तो फिर वहां रहे, तो अभी वो हमारा हेडक्वार्टर्स है। और उस हेडक्वार्टर से फिर कैसे अलग अलग हमारी ब्रांचेस खुली 1952 में, 50 में आए और 52 से हमारी ब्रांचेस भारत के कोने कोने में खुली। और ब्रह्मा बाबा यहाँ माउंट आबू में तपस्या करते थे। और तो कैसे 1969 तक ब्रह्मा बाबा यहीं माउंट आबू में रहे और तपस्या की, और बाकी जो भाई बहनें तैयार हुए उन सबको बाहर भेजा, भारत के कोने कोने में हमारे सेवा केंद्र खुले। और फिर 1969 18 जनवरी को बाबा ने अपना देह त्याग किया 93 इयर्स की उम्र में। और उसके बाद दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, ये हमारी दो मुख्य प्रशासिका बहनें बनी, जिन्होंने पूरा प्रशासन किया और विदेशों में हमारी ब्रांचेस खुल गई। और इस समय हमारी ब्रांचेस 140 देशों में हैं और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है, और आप जैसे लाखों परिवार हमारे विभिन्न सेंटर्स पर जाते हैं। कम से कम 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र होंगे हमारे, जहां पर आप जैसे भाई बहन जाकर ज्ञान योग की वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। और यही लक्ष्य है कि अब ये जल्दी इस सृष्टि का परिवर्तन आना है, ये कलयुग खत्म होकर सतयुग आना है, वो नई दुनिया आनी है। और उस नई दुनिया के लिए हमें तैयार होना है, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है, क्योंकि उसी के आधार से हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकेंगे और इस संसार का परिवर्तन कर सकेंगे। तो आपको भी हम इसीलिए निमंत्रण दिया है कि आप भी आइए और इन बातों को समझे और रिसर्च करिए, गुणों पर, वैल्यूज पर रिसर्च करिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर मानव से देव बनने का पुरुषार्थ करें। यही शॉर्ट में इतिहास है, बड़े शॉर्ट में सुनाया आपको ताकि यहाँ से ये प्रेरणा लेकर जाएं। तो कई हमसे पूछते हैं कि बहन जी यहाँ की फीस क्या है, आप इतना सारा हमें सिखाते हैं, इतना देते हैं, यहाँ की फीस क्या है? तो हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। देने लिए तैयार हो? कौन से खोटे पैसे? हाँ, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये खोटे हैं लेकिन बहुत मोटे हैं, जिससे ये घोर कलयुग बन गया है। इसीलिए जब ये दान करेंगे, इनको स्वाहा करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं ये यज्ञ है, इस यज्ञ में हमें स्वाहा करना है। यज्ञ कब रचा जाता है? जब कोई आपत आती है। तो अब संसार में वो आपत आ गई है और भगवान के महावाक्य सिद्ध हो रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ अधर्म का नाश करने और सद्धर्म की स्थापना करने। तो अभी कैसे गुप्त रूप में परमात्मा का कार्य चल रहा है, जिसमें बहनों को आगे किया है। ये लार्जेस्ट विमेन रन ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट दुनिया में सबसे बड़ी आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन जो बहनों के द्वारा रन हो रही है, क्योंकि भगवान ने नारी को आगे रखा है। कहा भी जाता है यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान है, नारी का पूजन है, वहाँ देवताओं का वास है। तो कैसे भगवान ने बहनों को आगे करके इस संसार का परिवर्तन करने का कार्य बहनों को दिया है। भाई भी है, बहुत भाई है जो समर्पित हैं, लेकिन जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी सेवा केंद्रों को संभालने का जो कार्य है, वो बहनों के द्वारा है। इसीलिए प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना। हाँ, पहले 16 आने होते थे ना, आना, तो एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना और इस मेडिटेशन को करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर मानव से देव पद का लक्ष्य लेकर के जाना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।